कभी सोचिए कि आप हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन में बैठें और कुछ ही घंटों में, मतलब बिना किसी झटके के, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चेन्नई की तरफ बढ़ रहे हो।
ये सपना लगता है।
लगता है ना, पर ये किसी जापानी बुलेट ट्रेन का सपना नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे का वो लक्ष्य है जिस पर अभी इसी वक्त जमीन पर काम चल रहा है।
बिल्कुल।
आज हमारे पास दक्षिण पूर्व रेलवे के कुछ अंदरूनी दस्तावेज हैं जो हमें सीधे इस बदलाव के दिल में ले जाते हैं, और आज हम इसी पर एक गहरी नजर डालेंगे कि भारत की सबसे व्यस्त लाइनों में से एक को भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है।
बिल्कुल। और इस बदलाव की जो चाबी है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, 225 kV ऑटो ट्रांसफॉर्मर सिस्टम।
225 kV, एटी सिस्टम भी कहते हैं इसे शायद।
हाँ, छोटा करके एटी सिस्टम कहते हैं। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। अभी हमारी ट्रेनें 85,000 वोल्ट यानी 25 kV की लाइन पर चलती हैं। ये नया सिस्टम भी ट्रेन को तो 25 kV ही देगा, लेकिन जो बिजली सबस्टेशन से तारों में भेजी जाएगी वो होगी 50,000 वोल्ट, मतलब 50 kV पर।
एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर बिजली 50 kV पर भेजी जा रही है तो ट्रेन को 25 kV कैसे मिलती है?
यहीं पर ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जादू है। ट्रैक के किनारे समझिए हर 10-15 किलोमीटर पर छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं जो इस 50 kV को ट्रेन के इस्तेमाल के लिए वापस 25 kV में बदल देते हैं।
अच्छा,
इसका सबसे बड़ा फायदा है लॉस कम करना। देखिए, फिजिक्स का सीधा नियम है, आप जितना ज्यादा वोल्टेज पर बिजली भेजेंगे उतनी ही कम ऊर्जा रास्ते में गर्मी बनकर बर्बाद होगी।
मतलब ज्यादा एफिशिएंट है ये सिस्टम।
बहुत ज्यादा। और ज्यादा रफ्तार और ज्यादा वजन वाली ट्रेनों को लगातार और स्थिर पावर चाहिए, और ये सिस्टम वही पक्का करता है।
तो ये सिर्फ रफ्तार बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उनमें दो बड़े लक्ष्य साफ साफ लिखे हैं। पहला तो यही है यात्री ट्रेनों के लिए 160 kmph की स्पीड।
हाँ।
और दूसरा जो शायद अर्थव्यवस्था के लिए और भी जरूरी है वो है माल ढुलाई की क्षमता को 3,000 मिलियन टन तक ले जाना।
ये बहुत बड़े नंबर हैं।
इसका मतलब तो ये हुआ कि इसी ट्रैक पर ज्यादा भारी और तेज मालगाड़ियां भी चलेंगी,
और यही बात इसे और खास बनाती है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई नई नहीं है, हाई स्पीड रेलवे वाले कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFCC के पश्चिमी हिस्से में इस्तेमाल हो रही है।
हाँ, वहाँ तो है,
लेकिन वो एक तरह से एकदम नई, बिल्कुल अलग थलग लाइन थी। ये प्रोजेक्ट इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार इस एडवांस सिस्टम को भारत की मौजूदा धड़कती हुई मेन लाइनों में से एक पर लगाया जा रहा है।
ये तो एक चलती हुई गाड़ी का इंजन बदलने जैसा हुआ।
बिल्कुल सही कहा आपने।
और आज हम पूरे हावड़ा चेन्नई रूट की नहीं बल्कि इसके एक बहुत ही अहम हिस्से खड़गपुर से भद्रक के बीच चल रहे काम की चीरफाड़ करेंगे। इस काम का जिम्मा मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL को। तो हमारा मिशन साफ है, इन दस्तावेजों के जरिए समझना कि जमीन पर काम कहाँ तक पहुँचा है, ये कितना बड़ा और पेचीदा है, और इसे पूरा करने में क्या क्या असली दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो इस अपग्रेडेशन का जमीन पर मतलब क्या है? कागजों पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर जब RVNL की टीम साइट पर जाती है तो उन्हें असल में करना क्या होता है?
देखिए, मुख्य रूप से दो बड़े काम हैं। पहला, नेगेटिव फीडर लाइन बिछाना।
नेगेटिव फीडर?
हाँ, आसान भाषा में समझें तो अगर ट्रेन की ऊपर दौड़ता तार बिजली का फेज वायर है तो ये नेगेटिव फीडर एक तरह से न्यूट्रल वायर का काम करता है। ये दोनों मिलकर ही उस 50 kV वाले सर्किट को पूरा करते हैं जिससे पावर लॉस कम होता है। इसके बिना एटी सिस्टम काम ही नहीं कर सकता।
अच्छा,
और दूसरा काम है मौजूदा ओवरहेड इक्विपमेंट यानी OHE, जो खंबे और तार हम सब देखते हैं, उन्हें 160 kmph की स्पीड के हिसाब से मजबूत और संशोधित करना।
और ये काम सिर्फ दो लाइनों पर नहीं हो रहा है ना, मेरे ख्याल से यहीं पर चीजें और जटिल हो जाती हैं।
हाँ, यहीं पर इस प्रोजेक्ट का असली पैमाना समझ में आता है। खड़गपुर भद्रक सेक्शन पर अभी दो लाइनें हैं, UP और डाउन। इन्हीं के साथ साथ एक तीसरी लाइन बनाने का काम भी चल रहा है जो दक्षिण पूर्व रेलवे की कंस्ट्रक्शन विंग कर रही है।
मतलब तीन लाइनें एक साथ?
हाँ, RVNL को इन दोनों पुरानी लाइनों के साथ साथ इस नई तीसरी लाइन के लिए भी नेगेटिव फीडर बिछाने का काम दिया गया है। ये दिखाता है कि रेलवे सिर्फ आज के ट्रैफिक को नहीं देख रहा बल्कि भविष्य में बढ़ने वाले लोड के लिए पहले से तैयारी कर रहा है। तीनों लाइनें एक साथ अपग्रेड हो रही हैं। चाहिए।
अब जरा आंकड़ों पर आते हैं क्योंकि वही इस काम की विशालता का असली एहसास कराते हैं। इस नेगेटिव फीडर लाइन को हवा में टांगने के लिए खंभे चाहिए और खंभों के लिए नींव। दस्तावेजों के मुताबिक करीब 8,900 नींव खोदी जानी है।
8,900?
8,900 और फिर उन पर उतने ही खंभे जिन्हें रेलवे की भाषा में मास्ट कहते हैं खड़े किए जाने हैं। ये तो किसी छोटे शहर को बसाने जैसा काम लग रहा है।
ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इससे अंदाजा लगता है कि ये सिर्फ कुछ तार बदलने का काम नहीं है, ये पूरे कॉरिडोर के इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जमीन से उखाड़ कर दोबारा बनाने जैसा है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल 8,900 नींवों के लक्ष्य के मुकाबले असल में हुआ कितना है। यहाँ कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। दस्तावेज बताते हैं कि लगभग 6,200 नींवों का काम पूरा हो चुका है, यानी करीब 70%। पहली नजर में ये बहुत अच्छी प्रगति लगती है।
हाँ, 70% सुनने में वाकई अच्छा लगता है, लेकिन इसी रिपोर्ट में एक और बात लिखी है जो बताती है कि ये सफर आसान नहीं रहा।
क्या?
इसमें साफ लिखा है कि काम में देरी का एक बड़ा कारण था इस साल नवंबर तक जारी रहने वाली लंबी बारिश। हम यहाँ हाईटेक सिग्नलिंग और 50,000 वोल्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वाली टीम को सबसे पहले मौसम से लड़ना पड़ता है।
सही बात है।
अगर साइट पर पानी भरा है तो आप नींव खोद ही नहीं सकते। सिंपल।
ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है। खैर, नींव तो 70% बन गई। अब उन खंभों की बात करते हैं जो इन नींवों पर खड़े होने हैं। यहाँ पर आंकड़े एक अलग ही कहानी कहते हैं। 8,900 खंभों में से अब तक सिर्फ 1950 मेन मास्ट और करीब 300 छोटे ड्वार्फ मास्ट ही लगे हैं। मतलब नींव 70% तैयार है, लेकिन खंभे सिर्फ 25% के आसपास लगे हैं। इतना बड़ा अंतर क्यों? क्या खंभों की सप्लाई में कोई कमी है?
नहीं नहीं, ये सप्लाई चेन का मसला नहीं है। इसकी वजह ज्यादा पेचीदा है और वो भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती भी है, ट्रैफिक।
ट्रैफिक?
हाँ, नींव खोदने का काम आप फिर भी ट्रैक से थोड़ी दूरी पर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको खंबे खड़े करने के लिए बड़ी बड़ी क्रेनें ट्रैक के पास लानी होती हैं, आपको ब्लॉक चाहिए होता है।
मतलब ट्रेनें रोकनी पड़ती हैं?
बिल्कुल, आपको कुछ घंटों के लिए ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ती है जिसे ट्रैफिक ब्लॉक कहते हैं, और बिजली की सप्लाई भी बंद करनी पड़ती है जिसे पावर ब्लॉक कहते हैं।
और हावड़ा चेन्नई रूट पर ट्रैफिक ब्लॉक लेना तो ये वैसा ही है जैसे आप पीक आवर्स में मुंबई की लोकल को आधे घंटे के लिए रोकने की इजाज़त मांग रहे हो। ये भारत की आर्थिक धमनी है, हर मिनट यहाँ से ट्रेनें गुजर रही हैं।
बिल्कुल, इसीलिए ये 70% और 25% का अंतर सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी बयान करते हैं। ये बताते हैं कि एक चालू और बेहद व्यस्त नेटवर्क को अपग्रेड करना कितना मुश्किल काम है। आप नींव तो बना लेते हैं, पर जैसे ही आपको लाइव सिस्टम के पास जाना होता है, आपकी रफ्तार एकदम से घट जाती है। इसके अलावा क्रेन और मजदूरों की उपलब्धता भी एक मुद्दा तो है ही।
एक मिनट, मतलब 8,900 में से 6,200 नींव तैयार हैं, लेकिन उनपे खंबे नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि ट्रैक के किनारे मीलों तक सिर्फ जमीन से निकले हुए कॉन्क्रीट के ठूंठ दिख रहे होंगे। ये तो देखने में भी एक अजीब नजारा होगा।
हाँ, एक तरह से भविष्य के निर्माण की वो तस्वीर है जो भी अधूरी है। और सिर्फ खंबे खड़े कर देना ही काफी नहीं, उन्हें नींव में मजबूती से जमाने के लिए ग्राउटिंग करनी पड़ती है, मतलब सीमेंट और केमिकल का घोल भरना पड़ता है।
अच्छा।
अच्छी खबर यह है कि जितने खंबे लगे हैं उनमें से ज्यादातर की ग्राउटिंग हो चुकी है, सिर्फ 50 बाकी हैं। लेकिन इस छोटे से काम ने भी अपनी चुनौतियां हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि कई जगहों पर पहुंच मार्ग का न होना या पानी भरा होना जैसी दिक्कतें आईं।
और इसमें एक सुरक्षा का पहलू भी तो है। अगर कोई खंभा मौजूदा 25,000 वोल्ट की चालू लाइन के बहुत करीब है तो आप ग्राउटिंग का काम भी बिना पावर ब्लॉक के नहीं कर सकते। जरा सी चूक एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
सही कहा, एक काम एक तरह से सर्जरी जैसा है जहां आपको शरीर के बाकी अंगों को चालू रखते हुए एक हिस्से का ऑपरेशन करना होता है। हर कदम बहुत सोच समझ कर और सुरक्षित तरीके से उठाना पड़ता है।
तो नींव तैयार है, खंभे लगने में दिक्कत आ रही है, पर मान लीजिए खंभे लग भी गए तो असली चीज तो वो नेगेटिव फीडर तार है, उनका क्या हाल है?
तारों का काम भी तीनों लाइनों पर शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर करीब 522 किलोमीटर लंबा नेगेटिव फीडर तार बिछाया जाना है।
522 किलोमीटर?
हाँ, और इसमें से अभी तक लगभग 35.50 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है।
522 में से सिर्फ 35, ये तो बहुत कम लगता है।
हाँ, एक कम है, लेकिन इसमें एक पैटर्न छुपा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस 35 किलोमीटर में से ज्यादातर काम नहीं बन रही तीसरी लाइन पर हुआ है।
अच्छा।
इससे वही बात फिर साबित होती है जो हमने खंभों के मामले में की थी। एक नई लाइन जहां अभी रेगुलर ट्रेनें नहीं चल रही हैं, वहां काम करना कहीं ज्यादा आसान और तेज होता है। आपको ब्लॉक के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, लेकिन जैसे ही आप मौजूदा यूपी और डाउनलाइन पर आते हैं, काम की रफ्तार घट जाती है।
क्या भविष्य के लिए कोई टारगेट सेट किया गया है? क्योंकि इस रफ्तार से तो सालों लग जाएंगे।
हाँ, एक अंतरिम लक्ष्य है। दस्तावेज में 15 फरवरी 2026 तक कम से कम 100 किलोमीटर नेगेटिव फीडर का काम पूरा करने की योजना का जिक्र है।
ये शायद टीम पर थोड़ा दबाव बनाने और काम को गति देने के लिए एक जरूरी कदम है।
ठीक है, तो हमने नींव, खंभे और तार, इन तीनों की जमीनी हकीकत देख ली, लेकिन ये सब तो सिर्फ ढांचा है। इन्हें बिजली कहाँ से मिलेगी? पावर सप्लाई के मोर्चे पर क्या हो रहा है?
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो ये तार और खंभे बिना बिजली के सिर्फ लोहा और एल्यूमिनियम है। इस पूरे सिस्टम को जान देने के लिए एक मजबूत पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसके तहत तीन बड़े ट्रैक्शन सबस्टेशंस, मतलब TSS, बन रहे हैं हिजली, जलेश्वर और बालेश्वर में। यही वो जगह होंगी जहां ग्रिड से हाई वोल्टेज बिजली आएगी और उसे ट्रेनों के लिए बदला जाएगा।
और उन ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स का क्या, जिनकी हमने शुरू में बात की थी, वो कहां लगेंगे?
वो इन सब स्टेशनों के बीच में लगेंगे। सब स्टेशनों के अलावा कई स्विचिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में बिल्दा, नारंगढ़, दांतन, लखनाथ, रूपसा, बास्ता जैसी कई जगहों का नाम है जहां ऑटो ट्रांसफॉर्मर वाले स्विचिंग स्टेशन बनेंगे।
ये नाम इस प्रोजेक्ट को एक भौगोलिक पहचान देते हैं। ये सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि इन असली जगहों पर आकार ले रहा है।
बिल्कुल।
तो इन सब स्टेशनों और स्विचिंग स्टेशनों पर काम की क्या स्थिति है? क्या वहां भी काम शुरू हो गया है?
बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी जगहों पर सिविल इंजीनियरिंग का काम जोरों पर है। कहीं रिटेनिंग वॉल बन रही है, कहीं कंट्रोल रूम की इमारतें खड़ी हो रही हैं, तो कहीं उपकरणों के लिए भारी भरकम फाउंडेशन तैयार किए जा रहे हैं।
मतलब ये प्रोजेक्ट एक साथ कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है।
हाँ, एक तरफ ट्रैक के किनारे खंभे लग रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें बिजली देने वाले पावर हाउस भी तैयार हो रहे हैं। ये एक बेहद जटिल और सिंक्रोनाइज्ड कोशिश है।
तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है?
तस्वीर ये है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचना सिर्फ एक बटन दबाने जैसा नहीं है। ये एक विशाल, जटिल और चुनौतियों से भरा सफर है। हमने इसका पैमाना देखा, लगभग 9000 खंभे। हमने इसकी प्रगति देखी, 70% नींव तैयार हैं, जो एक उपलब्धि है। और हमने इसकी असली मुश्किलों को भी समझा, बारिश, पानी और सबसे बढ़कर भारत के सबसे व्यस्त रेलवे लाइनों में से एक पर काम करने की अंतर्निहित चुनौती।
ये महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत के बीच की एक दिलचस्प खींचतान है। सपना है हाई स्पीड ट्रेनों का, लेकिन हकीकत है ट्रैफिक ब्लॉक के लिए घंटों इंतजार करने की।
सही कहा।
सपना है भारी माल गाड़ियों से अर्थव्यवस्था को गति देने का, लेकिन हकीकत है कि एक चालू लाइन पर काम करने के लिए आपको क्रेन और मजदूरों का भी इंतजाम करना पड़ता है।
बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि आधुनिकीकरण एक धैर्य और योजना का खेल है। ये इस बात का भी सबूत है कि भारतीय रेलवे की असली ताकत उसके इंजीनियर और कर्मचारी हैं, जो इन मुश्किल हालात में भी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब भी प्रोजेक्ट पूरा होगा तो वो सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि इन हजारों छोटी छोटी जीतों का नतीजा होगा।
और यहाँ से एक अंतिम विचार दिमाग में आता है जिस पर सोचा जा सकता है। इस पूरी चर्चा में एक बात बार बार सामने आई है, नई तीसरी लाइन पर काम करना आसान है जबकि पुरानी चालू लाइनों पर काम करना बेहद मुश्किल।
हाँ, ये तो साफ है।
इन दस्तावेजों में जो चुनौतियां हैं वो मौजूदा व्यस्त लाइनों को अपग्रेड करने की हैं। तो सवाल ये उठता है, जैसे जैसे भारत अपने रेल नेटवर्क को आधुनिक बना रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट भविष्य के अपग्रेड के लिए एक सबक है?
अच्छा सवाल है।
या फिर ये इस बात पर और ज्यादा जोर देता है कि रोजमर्रा के ट्रैफिक की बाधाओं से मुक्त, पूरी तरह से नए और समर्पित हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने के फायदे कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं, भले ही उनमें शुरुआत में लागत ज्यादा आए। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।